नमस्कार, द प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रेवती करण। पॉडकास्ट के इस अंक में आज मैं सुनाऊंगी आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने बिना मुकदमे के जेल में 22 साल बिताए। 47 साल के जयप्रकाश बुधवार को जब उत्तर प्रदेश के अपने गांव कमालपुर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। उनके पिता को लकवा मार गया था और उनकी माँ, भाई और बहन की मौत हो चुकी थी। वह अब अपनी मातृभाषा भोजपुरी भी धारा प्रवाह नहीं बोल सकता था। प्रकाश 2 दशक पहले अपने गरीब परिवार की मदद के लिए काम की तलाश में निकला था, लेकिन उसके बाद से वह घर नहीं लौटा था। उसके रिश्तेदार उसे यहाँ वहाँ तलाशते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उन्हें यह तक नहीं पता था कि वह कैसे अक्टूबर 2000 में जम्मू पहुंचा और किस आधार पर उसे बिना लाइसेंस के कथित तौर पर गोला बारूद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे इस विचाराधीन अपराध के लिए जमानत मिल सकती थी, लेकिन प्रकाश 22 सालों तक जेल में बंद रहा। वह मानसिक रूप से बीमार था। वह कभी ट्रायल के लिए नहीं गया। उसके लिए 30,000 रुपये का जमानत बॉन्ड देने वाला भी कोई नहीं था। उसे जहाँ कहीं भी डिटेंशन में रखा गया था, वहाँ अधिकारियों को उनका नाम भी नहीं पता था। इस वजह से उनके मामले को कुछ समय के लिए एक असामान्य नाम दिया गया, राज्य बनाम व्यक्ति जिसकी फोटो फाइल पर लगी है उसका नाम ज्ञात नहीं है। फिर अचानक से अगस्त में भाग्य ने उनका साथ दिया। जयप्रकाश को उन विचाराधीन कैदियों की सूची में शामिल किया गया जिन्हें भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विशेष छूट दी गई थी। तब उनके चचेरे भाई सुदामा प्रसाद को जम्मू के अम्फला ज़िले में प्रकाश के होने की खबर मिली। इसके बाद प्रसाद ने जमानत राशि जमा कराई और जयप्रकाश को आखिरकार इस सोमवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वह 2 दिन पहले ही अपने गाँव पहुँचा है। सितंबर में प्रकाश ने अपने वकील इरफान खान के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर बिना किसी कारण के अवैध हिरासत में रखने के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ मामला झूठा और ज्यादा गंभीर नहीं था। हम यहाँ प्रकाश के दर्दनाक सफर को जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही यह भी पता लगा रहे हैं कि उसके परिवार को उसके ठिकाने का पता लगाने में इतना समय क्यों लगा, जबकि उनकी पहचान हो गई थी। जयप्रकाश बचपन में एक अच्छे छात्र थे और अंग्रेजी भी पढ़ लिख सकते थे, उनके चचेरे भाई सुदामा प्रसाद ने द प्रिंट को बताया। उन्होंने कहा वह अपने परिवार की खराब आर्थिक हालत के चलते घर छोड़कर गया था। उनका परिवार हमारे गाँव के सबसे गरीब परिवारों में से एक है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP जम्मू ने प्रकाश को अक्टूबर 2000 में आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन दोनों ही मामलों में आरोपी को जमानत दी जा सकती है। याचिका के अनुसार पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तारी के समय उनके पास 34 जिंदा AK-47 कारतूस बरामद किए गए थे। इस आरोप को सुनकर प्रसाद का दिमाग चकरा गया। उनके अनुसार यह अजीब लग रहा था कि प्रकाश का संबंध हथियारों से था, क्योंकि वह तो हर चीज़ से डर जाता था, यहाँ तक कि 3 साल के बच्चे से भी। सिटी कोर्ट के जनवरी 2001 के एक आदेश में कहा गया कि जमानत याचिका दायर करने के लिए आरोपी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है। यही वह आदेश भी था जिसके कारण उनके मामले का अज्ञात नामकरण किया गया था। 2001 में ही सिटी कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में जम्मू के सरकारी कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख ने प्रकाश को मानसिक रूप से बीमार बताया था, लेकिन प्रकाश के घर कोई सूचना नहीं भेजी गई। रिट याचिका में प्रकाश के परिवार ने मामला शुरू होने से पहले ही स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। प्रसाद ने कहा लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने में कुछ भी सामने नहीं आया। इतने सारे लोग गांव छोड़ देते हैं और वापस नहीं आते हैं। हमने सोचा शायद उसने भी ऐसा ही किया होगा। द प्रिंट से बात करते हुए प्रकाश के वकील इरफान खान ने कहा कि दोषी होने पर भी प्रकाश को कम से कम 3 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन वह इतने सालों तक बिना ट्रायल के जेल में बंद रहा। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी अवैध हिरासत अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत गारंटीड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में लिखा है, वह अब लगभग पागल है और लापरवाही के कारण बदतर स्थिति में रह रहा है। अवैध हिरासत के दौरान उसने अपनी माँ और असली भाई को खो दिया और उसके बूढ़े पिता उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। प्रकाश के चचेरे भाई ने दिप्रिंट को बताया कि इस दौरान प्रकाश की बहन की भी मौत हो गई थी। खान ने कहा, यह सवाल किया जाना चाहिए कि जब जेल अधिकारियों ने 2014 में उसका आधार कार्ड बनवाया था, जिसमें उसने अपना नाम यानी कि जयप्रकाश, पिता का नाम यानी कि मुरली और पता कमालपुर बनारस दिया था, तो यह कवायद तब यानी कि जमानत पर रिहा करने के समय क्यों नहीं की गई थी। रिट याचिका में कहा गया है कि 2014 में अम्फल्ला जिला जेल अधीक्षक SP ने आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय प्रकाश ने अपना सही नाम अपने पिता के नाम के साथ साथ अपने गांव, तहसील, डाकघर और ज़िले का विवरण स्पष्ट रूप से बताया था। आधार डिपार्टमेंट ने इस कार्ड को इसी पोस्टल एड्रेस पर भेजा था। प्रसाद ने कहा कि उनके परिवार को आधार कार्ड तो मिल गया, लेकिन उनके जेल में होने के कोई संकेत उन्हें नहीं मिले थे। उन्होंने पूछा, जब कार्ड उनके पते पर भेजा गया तो परिवार को यह क्यों नहीं बताया गया कि वह जेल में है। याचिका में कहा गया, यह प्रतिवादी संख्या 4 यानी कि अम्फल्ला जिला जेल SP की ड्यूटी थी कि कम से कम एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए नंबर 2 और 3 प्रतिवादी यानी कि वरिष्ठ अधीक्षक रेलवे पुलिस और स्टेशन हाउस अधिकारी GRP जम्मू को संदेश दिया जाता, लेकिन कुछ नहीं किया गया था। रिट याचिका में जहां एक तरफ प्रकाश के खिलाफ आपराधिक आरोपों को रद्द करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नागरिक सचिवालय को पुलिस और जेल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट के एकल पीठ के न्यायाधीश संजय धर ने 19 सितंबर को अंतरिम आदेश में कहा, रिट याचिका में लगाए गए आरोप अगर सही हैं तो ये मजिस्ट्रेट, पुलिस और जेल अधिकारियों के बीच बहुत ही खेदजनक स्थिति है। रिट याचिका के अनुसार प्रकाश को उस समय गिरफ्तार किया गया जब पुलिस गश्त कर रही थी। उन्होंने देखा कि वह बिना जूतों के अपनी पैंट में एक पॉलिथिन बैग लिए घूम रहा है। याचिका में आगे कहा गया कि जांच के बाद पुलिस ने JMIC सिटी जज की अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया कि वह पागल लग रहा है। पहले उल्लेखित 2001 के अदालती आदेश ने उसे विक्षिप्त दिमाग का पाया, जैसा कि आरोप पत्र में भी दावा किया गया था। उसे न्यायिक लॉकअप में भेज दिया गया और पुलिस को मुख्य चिकित्सा अधिकारी जम्मू द्वारा उसके चिकित्सीय जांच करने का निर्देश दिया गया। मई 2001 के एक आदेश के अनुसार प्रकाश की दिमागी जांच के आधार पर सिटी जज ने कहा कि वह व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जिला जेल जम्मू को उसके इलाज के लिए उसे भर्ती कराने का निर्देश दिया था। जज ने कोर्ट में रिकवरी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा था। इस पर HC ने नोट किया, लगता है फाइल को मामले में कोई और आदेश पारित किए बिना और मामले में कोई जांच किए बिना विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड में भेज दिया गया है। खान ने समझाया कि रिकॉर्ड में भेजने का मतलब है कि वह मामले को अस्थायी रूप से क्लोज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी 2023 को की जाएगी। रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 यानी कि SP अम्फल्ला जिला जेल की ओर से कथित लापरवाही को भी ध्यान में लाया गया है। इसमें कहा गया है कि उसके मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे सिर्फ खाना और रहने के लिए जगह दी गई। देश भर की जेलों में बंद 2/3 कैदियों को विचाराधीन कैदी माना गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी शीघ्र रिहाई का आह्वान किया था, क्योंकि वे कानूनी सहायता के बिना सालों से जेल में बंद थे। रिट याचिका के अनुसार प्रसाद को यूपी के धीना पुलिस स्टेशन से प्रकाश के जम्मू में बंद होने के बारे में पता चला था। जम्मू पुलिस ने पुलिस स्टेशन को संपर्क किया था क्योंकि वह उन विचाराधीन कैदियों की सूची में शामिल था जिन्हें विशेष छूट दी गई थी। प्रसाद ने कहा कि तब वह जम्मू गए और अम्फल्ला जेल में उनसे मिले। उन्होंने बताया कि प्रकाश उन्हें देख कर काफ़ी खुश थे। उन्होंने पंजाबी में कहा, मेरा भाई आ गया है और मुझे गले लगा लिया। प्रसाद के बॉन्ड प्रस्तुत करने के बाद सिटी जज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMIC ने सोमवार को अम्फला जिला जेल के प्रभारी को जयप्रकाश को रिहा करने का निर्देश दिया और मानसिक रोगों का इलाज कराने वाले अस्पताल में उनके इलाज का आदेश दिया। अदालत ने इसके साथ यह भी कहा कि जब वह अदालत के सामने पेश होने में सक्षम हो जाए तो कोर्ट के समक्ष उनकी पेशी की जाए। प्रकाश के लिए बीत चुके अपने उन 22 सालों को वापस पाना संभव नहीं होगा, भले ही गांव में उनका स्वागत माला और नए कपड़ों के साथ किया गया हो। उनके चचेरे भाई ने कहा कि उन्होंने भोजपुरी पर अपनी पकड़ खो दी है, लेकिन वह इसे बोलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।